लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हमने क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन की शुरुआत की है। आज हम नए विधान में युवाओं के संग ईश्वर की वार्ता का जिक्र करेंगे। नए विधान में हम यीशु को एक छोटे पुत्र के बारे में कहते हुए सुनते हैं जो अपने पिता के घर को छोड़कर दूर जाने की सोचता है। यद्यपि अपने में स्वतंत्र रहने की उसकी सोच विघटित हो जाती और वह अपने में अकेलेपन की कटुता और दरिद्रता का अनुभव करता है, तथापि वह अपने में साहस का अनुभव करता और एक नए जीवन की शुरुआत करने की सोचते हुए अपने पिता के घर लौटने की ठान लेता और अपने घर को लौटता है। युवा हृदय अपने में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हेतु तैयार रहते हैं। वे लौटते उठते और अपने जीवन में नई शुरुआत करने को तैयार रहते हैं। कैसे कोई उस पुत्र की नई शुरुआत में उसकी मदद नहीं करने से अपने को दूर रख सकता है। यद्यपि उसके बड़े भाई को हम हृदय से बूढ़ा पाते हैं, वह अपने में लोभ से ग्रसित, स्वार्थी और घृणा से भरा है। यीशु बड़े बेटे की तुलना में जो अपने को विश्वासी घोषित करता जिसमें प्रेम और करुणा की कमी है, छोटे पापी बेटे की प्रशंसा करते हैं जो सही राह में लौट आता है। संत पापा कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त अपने में स्वयं युवा हैं, जो हमें अपनी तरह युवा हृदय प्रदान करने की चाह रखते हैं। ईश्वर के वचन हमें कहते हैं, अपनी पुरानी खमीर को फेंक दो जिससे तुम नए आटा को धारण कर सको। संत पौलुस हमें अपने पुराने व्यवहारों का परित्याग करने को कहते और अपने में नए युवापन को धारण करने का निमंत्रण देते हैं। वे हमें अपने में युवा स्वभाव को धारण करने को कहते हैं जो कि करुणा, दयालुता, विनम्रता और धैर्यवान है, जिससे हम एक दूसरे को सहन करते हुए यदि हम में किसी के विरुद्ध कोई शिकायत है तो एक दूसरे को क्षमा कर सकें। संक्षेप में युवा होने का अर्थ एक ऐसे हृदय को अपने में धारण करना है जो प्रेम के योग्य हो, जबकि सारी चीजें जो हमें एक दूसरे से अलग करती हैं हमारे हृदय को बुजुर्ग बना देती है। अतः वे कहते हैं, इससे भी बढ़कर प्रेम के वस्त्र अपने में धारण करें जो सभी चीजों को एक साथ अपने में पूर्ण एकता तक पहुंचा देता है। हम इस बात को याद करें कि यीशु ख्रिस्त स्वयं वयस्कों की ओर उतना ध्यान नहीं देते जो युवाओं को हे की दृष्टि से देखते हैं। वे उन्हें इस बात हेतु आह्वान करते हैं कि अपने में जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा बने। उनके लिए उम्र अपने में महत्व नहीं रखता है और छोटा होना अपने में कम उपयोगी या सम्मान का होना भी नहीं था। ईश्वर का वचन हमें कहता है कि छोटों के साथ भाइयों के रूप में व्यवहार किया जाए। यह परिवार के माता पिता को यह चेतावनी देता है कि वे अपने बच्चों को ना खिझाएं जिससे वे हतोत्साह ना हूँ। युवा अपने जीवन में हताश होने के लिए नहीं, अपितु बड़े सपने देखने को बुलाए गए हैं। वे बड़े क्षितिज की खोज करने, ऊंची उड़ान भरने, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने, चुनौतियों को लेने और अपने को सर्वोत्तम तरीके से देते हुए एक अच्छी दुनिया के निर्माण में मदद करने को बुलाए गए हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, यही कारण है कि मैं युवाओं को इस बात हेतु आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में वे आशाओं को ना खोएं। मैं उन सबों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी जवानी को तुच्छ ना समझें। यद्यपि युवाओं से इस बात हेतु निवेदन किया जाता है कि वे अपने से बड़ों के अधिकार का सम्मान करें, धर्मग्रंथ बाइबल में इस बात की वृहद रूप से चर्चा की गई है कि बड़ों का आदर किया जाए, क्योंकि वे अपने अनुभवों में धनी होते हैं। उन्हें अपने जीवन में सफलता और असफलता का अनुभव है। वे जीवन की आनंद और खुशी को जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के सपनों को हासिल करने में निराशाओं के दौर से होकर गुजरना पड़ा है। अपने हृदय की शांतिमय स्थिति में वे उन अनुभवों को समाहित करते हैं जो हमें अपने जीवन में गलती करने से बचा सकती है। एक प्राचीन कहावत हमारा ध्यान इस ओर कराती है कि हम अपनी खामियों के प्रति सतर्क रहें और हृदय के अंतःस्थल से निकलने वाली बातों से अवगत हों। हम युवाओं को समझाएं कि वे सभी बातों में संयम के साथ रहें। यह हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं कि हम युवाओं की सारी बातों को 100% अपने में लें या बुजुर्गों की बातों का तिरस्कार करें, क्योंकि वे एक दूसरी पीढ़ी के व्यक्तित्व हो गए हैं। यीशु ख्रिस्त हमें बतलाते हैं कि विवेकी व्यक्ति अपने हृदय की गहराई से नई और पुरानी दोनों चीजों को निकालता है। एक विवेकशील युवा अपने को भविष्य के लिए खुला रखते हुए दूसरों के अनुभवों से अच्छी चीजों को सुनने हेतु तैयार रहता है। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम एक व्यक्ति को पाते हैं जो यीशु को संहिता की बातों की चर्चा करते हुए सुनता और कहता है, इन सारी बातों का अनुपालन मैंने अपने युवा काल से ही किया है। स्तोत्र लेखक इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, तू हे ईश्वर मेरी आशा मेरा विश्वास है, हे प्रभु मेरे युवा काल से ही तूने मुझे इन बातों की शिक्षा दी है और मैं तेरे इन आश्चर्यजनक कार्यों का बखान करता हूँ। अपने युवा काल में किए गए अच्छे कार्यों के लिए हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए, जहाँ हमने अपने जीवन को ईश्वर के लिए खुला रखते हुए एक अलग ही रूप में जिया है। ऐसा करने के द्वारा हमने अपने जीवन से कुछ भी बातों को नहीं खोया है, बल्कि उनके द्वारा हम अपने जीवन में मजबूत और नवीन किए गए हैं। तुम्हारे जीवन के युवा काल चील की भांति नवीन किए जाते हैं। यही कारण है कि संत अगुस्टिन अपने में शोक करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें प्रेम करने में देर किया है। सुंदरता अपने में पुरानी लेकिन सदा नई है। मैंने तुम्हें प्रेम करने में देर किया है। सुसमाचार का वह युवक जो अपने युवा काल में ईश्वर के प्रति निष्ठावान बना रहा, अपनी बढ़ती उम्र में अपने सपनों को खो दिया। वह अपने को अपने धन दौलत से ही संयुक्त रखना उचित समझा। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत क्रिस्तुस विविध पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। प्रभु के साथ मुलाकात करने में लज्जा महसूस ना करें, उस उत्सव से अपने को दूर ना करें जिसको लोग ईश्वर के करीब होने पर मनाते हैं। उक्त वचन पापा फ्रांसिस ने वैटिकन के प्रेरित आवास संत मार्था के प्रार्थनालय में क्रिस्ताग अर्पित करते हुए प्रवचन में कही। मंगलवार को संत पापा ने प्रवचन में संत मार्कुस रचित सुसमाचार से लिए गए पाठ पर चिंतन किया। संत पापा ने कहा, सुसमाचार तभी आगे बढ़ सकता है जब सुसमाचार प्रचारक अपने संपूर्ण जीवन और खुशी से इसका प्रचार करता है। यह आनंद परिवार में मिलजुल कर रहने से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, यह ख्रिस्ती होने का आनंद है। संत पापा ने पहले पाठ पर भी चिंतन किया जिसको सामुएल के ग्रंथ से लिया गया है, जहां दाऊद और इसराइलों का जिक्र किया गया है जो संधि की मंजूषा की यरूशलेम लौटाए जाने पर खुशी मनाते हैं। संत पापा ने याद किया कि संधि की मंजूषा का अपहरण कर लिया गया था जिसको वापस लौटाए जाने पर एक बड़ा उत्सव मनाया गया। लोगों ने महसूस किया कि ईश्वर उनके नजदीक है और इसके लिए खुशी मनाई। राजा दाऊद जो उनके साथ थे, उन्होंने प्रोसेशन की अगुवाई की तथा प्रभु को बलिदान अर्पित किया। उन्होंने लोगों के साथ पूरी शक्ति से जय घोष किया, नृत्य किया और गाया। संत पापा ने कहा कि ईश्वर प्रजा आनंदित थी क्योंकि ईश्वर उनके साथ थे। दाऊद ईश्वर के सामने नाचे, वे शर्म किए बिना अपनी खुशी व्यक्त किए। यह प्रभु के साथ मुलाकात का आध्यात्मिक आनंद है। राजा दाऊद ने यह नहीं सोचा कि वे एक राजा हैं और उन्हें लोगों से जरा हटकर रहना चाहिए। दाऊद प्रभु को प्यार करते थे, अतः मंजूषा को वापस लाया जाना उससे आनंद प्रदान करता है, अतः वे सभी लोगों के साथ खुशी का इजहार करते हैं। संत पापा ने कहा कि प्रभु का हमारे करीब होना हमें भी खुशी प्रदान करता है, जिसके कारण पलियों और गांव में खुशी मनाई जाती है। इसराइल के इतिहास में एक दूसरा उदाहरण है जब संहिता का ग्रंथ प्राप्त किया जाता है। नबी नहेमिया लोगों के साथ खुशी से रो पड़ते हैं और खुशी मनाते हैं। सामुएल के ग्रंथ में आगे दाऊद की घर वापसी का जिक्र किया गया है। साउल की पुत्री मीकल दाऊद का तिरस्कार करती है, राजा को नाचते हुए देखकर वह उनका अपमान करते हुए कहती है, आज इसराइल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निकम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे। संत पापा ने कहा कि यह उनकी धार्मिकता का तिरस्कार है। प्रभु के साथ सहज आनंद मनाने के लिए दाऊद ने मीकल से कहा, प्रभु ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे सारे घराने की अपेक्षा मुझे चुना है और मुझे प्रभु की प्रजा इसराइल का शासक बनाया है। मैं उसी प्रभु के सामने नाचता रहा और नाचूंगा। और बाइबल बतलाता है कि मीकल की कोई संतान नहीं हुई, प्रभु ने उसे दंड दिया। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्ते जो खुश नहीं हैं, वे कोई फल नहीं ला सकते। यदि हृदय में खुशी नहीं है तो फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। संत पापा ने गौर किया कि पर्व को केवल आध्यात्मिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता, बल्कि बांटने के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। दाऊद ने उस दिन रोटी, भुना हुआ मांस और किशमिश पर आशीष दी और उसे लोगों को बांटा ताकि सभी लोग अपने अपने घरों में खुशी मना सकें। अतः ईश्वचन का उत्सव मनाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। संत पापा ने कहा कि कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकती और नीरस प्रचारक के द्वारा सुसमाचार का प्रचार नहीं हो सकता। सुसमाचार का प्रचार तभी हो सकता है जब ईश्वचन को खुशी से स्वीकार किया जाए, प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ा जाए, बिना शर्म किए प्रभु के लिए आनंद मनाया जाए और मीकल की तरह तिरस्कार नहीं करने तथा ख्रिस्ते जो औपचारिकता के गुलाम हैं, उनके समान नहीं होने के द्वारा। फसल नष्ट करने वाले टिड्डियों का झुंड पूर्वी अफ्रीका को पार कर रहा है, जिसके आक्रमण से दशकों में खाद्य असुरक्षा और मवेशियों पर खतरा सबसे अधिक बढ़ा है। इथोपिया और सोमालिया में आपदा ढाने के बाद टिड्डियों का झुंड अब केन्या पहुंच चुका है, एक ऐसे देश में जहां करीब 10 मिलियन लोग पहले से खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इथोपिया और सोमालिया के कुछ क्षेत्र जिन्होंने 25 वर्षों में इस पैमाने पर संक्रमण का सामना नहीं किया था, उन्होंने अपनी फसलों को पूरी तरह नष्ट होते देखा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन को डर है कि जून महीने तक टिड्डियों की संख्या 500 गुना अधिक हो जाएगी और दक्षिणी सूडान और युगांडा को भी खतरे में डाल देगी। विशेषज्ञों के अनुसार टिड्डियों का हमला जो इस समय पूर्वी अफ्रीका में हो रहा है, यह मौसम की खतरनाक स्थिति से उत्पन्न हुई है। 2019 की शुरुआत सूखा तथा समापन तेज बारिश के मौसम से हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि आज हम टिड्डियों की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक झुंड में करीब 80 मिलियन टिड्डियां हो सकती हैं और करीब 5 लाख टिड्डियां एक दिन में करीब 2500 लोगों के समान भोजन खा सकते हैं। झुंड जो सोमालिया और इथोपिया पार कर केन्या पहुंच चुका है, फाओ का अनुमान है कि उसमें लगभग 200 बिलियन टिड्डियां शामिल हैं। टिड्डियों को बाइबल में ईश्वर के क्रोध का प्रतीक माना जाता है। हिब्रू में उसे असंख्य कहा जाता था और अरब देशों में टिड्डियों के झुंड को सूर्य को अंधकार करने वाला माना जाता था। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले बरसात के मौसम की शुरुआत में टिड्डियों को नियंत्रित न किया जाए तो आमतौर पर मार्च के आसपास किसान अपने फसलों को नष्ट होते हुए देखेंगे। साल 2008 में कथित हिंदू चरमपंथियों ने अपने धर्मगुरु की हत्या का आरोप लगाकर 100 से अधिक ख्रिस्तों की हत्या की, जबकि हिंदू धर्मगुरु की हत्या माओवादियों द्वारा की गई थी। उड़ीसा में 2020-21 के लिए स्थानीय धर्मदर्श धर्मसभा का आयोजन किया गया है। महाधर्मदर्श जोन पारवा के लिए यह अवसर विश्वासियों पर आशीष, विश्वास को मजबूत करने और साहस का समय होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में उड़ीसा के कंधमाल जिले में घातक ईसाई विरोधी हमलों के सिलसिले में सांप्रदायिक हिंसा के 3,700 से अधिक आरोपियों को बरी कर दिया है। एशिया न्यूज से बातें करते हुए कटक भुवनेश्वर के महाधर्मदर्श जोन बारवा ने कहा, हमने हमेशा न्याय की उम्मीद की थी। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।